Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Richam vacham prapadye mano yajuh prapadye shami pranam prapadye chakshuh srotram prapadye vago Shahujo mai prana pano Janme chidran chakshuso Hridaya shimanishu atitrinam Brihaspatirame dadhatu Sanno bhavatu bhuvanasyaspadihi Sanno bhavatu bhuvanasyaspadihi Om bhadram karanebhihi Srinuyame devaha Bhadram pasye makshabhiryajatraha Sthirairangai stushtuvagum sastanovir Vyase madivahitam yadayuhu Swasti na indro vridhasravaha Swasti na pukha vishvavedaha Swasti na starikshyo aristanemihi Swasti no brihaspati dadhatu Om shantihi, shantihi, shantihi Prem se boli Sachidananda Bhagavan ki Swanam dhan prem puri ji Maharaj ki Vichar chal raha hai Shri Mahimna ke upar पहले उच्चारण कर लें। 11 श्लोक है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनम वैरव्यतिकरम् दशाशो यद्बाहु नभृतरण कंडूपरवशान् शिरा पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्पूर्जितमिदम्
पुष्पदंताचार्य जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव महिमना में अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विचार किया था दसवें श्लोक में सृष्टि का कारणवाद, जो ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास भगवान ने विचार किया है, जन्माद्यस्यतः, जिससे संसार का सृजन, संसार का पालन और संहार हो, वही अद्वितीय चैतन्य सत्ता है, वही ब्रह्म है, उसी को परमात्मा भगवान नाना नामों से पुकारते हैं। तो वहां पर अनेक प्रकार के मतभेद का उत्थापन किया था, खासकर तीन वहां पर विचार दिया था, आरंभवाद, परिणामवाद, असदवाद और विवर्तवाद। आरंभवाद तो न्याय दर्शन का है, परिणामवाद सांख्य दर्शन का है, और क्षणिक विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन का है, और वेदांत सिद्धांत विवर्तवाद मानता है। ये तो प्रधान जगत के विषय में विचार करने वाले हैं, पर इसके अतिरिक्त भी और कई हैं। यदि आप प्रारंभ से विचार करें तो सबसे पहले चार्वाक दर्शन आता है, वह है स्वभाववादी। वह केवल चार ही तत्व मानता है, पृथ्वी जल तेज वायु, और कहता है चार ही तत्वों से संसार उत्पन्न हुआ है, यह स्वाभाविक है। स्वाभाविक ही नदियां प्रवाहित हो रही हैं, स्वभाव से इस एक बीज को धरती में डालने के बाद अंकुरित होकर पौधा होता है, पल्वित पुष्पित होता है, स्वभाव से नष्ट हो जाता है। उसके दृष्टिकोण से शरीर ही आत्मा है, और शरीर के संबंधित संसाधन या सुख प्राप्त करना स्वर्ग है, और शरीर पात को ही मोक्ष कहता है। चार्वाक दर्शन जिसको हम भौतिकवादी कहते हैं, वे शरीर से भिन्न किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि पान है, पान के पत्ते होते हैं, उसमें चूना कत्था इस सब मिला करके जब चर्वण करते हैं तो लालिमा उत्पन्न होती है। ऐसे ही चार भूतों के, पृथ्वी जल तेज वायु जो चार भूत हैं, इन्हीं का एक विशेष अंश है जिसको हम चैतन्य कहते हैं, इससे भिन्न कोई चैतन्य नामक चीज नहीं है। दूसरा दृष्टांत देते हैं शराब का। जैसे शराब जो है किसी चीज को सड़ाकर बनाई जाती है, उसमें मादकता होती है, ऐसे चार भूतों का एक विशेष अंश है, उसको हम चैतन्य कहते हैं, जिसको लोग आत्मा कहा करते हैं, और शरीर पाथी मोक्ष, यह उसका सिद्धांत है। ये तो यहां तक कहते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, मतलब चाहे कुछ भी करना पड़े, मरने के बाद न कोई आत्मा है न परमात्मा है, इस स्वभाववादी चार्वाक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जैन दर्शन आता है, वह कहता है कि परमाणु से ही संसार का निर्माण हुआ, परमाणुओं के समुदाय का नाम है ये संसार। उसके दृष्टिकोण से भी ईश्वर की सत्ता अतिरिक्त नहीं है। जैन दर्शन को स्यादवादी दर्शन कहते हैं, हर चीज पर स्यादवाद, मतलब कि अस्ति च नास्ति च अस्ति च नास्ति च कई विकल्प उठाते हैं, इसको सप्तभृंगी नय भी कहा करते हैं। इसके आगे बौद्ध दर्शन आता है, बौद्ध दर्शन ने बड़ा ही विचार किया है, पर बौद्ध दर्शन भी आत्मा के सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं, न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं। कहते हैं कि शून्य ही जगत का मूल है, शून्य से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ। जैसे कोई आम का छोटा सा बीज हम धरती में डालते हैं, वह पहले नष्ट होता है, सड़ता है, गलता है, शून्य भाव को प्राप्त होता है, इसके बाद अंकुर निकलता है। इसके अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है जो संसार को बनाया। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि शून्य से जगत का सृजन हुआ, और बाद में पुनः शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे न्याय वैशेषिक दर्शन आते हैं, जिसके विषय में परो द्रव्या द्रव्य से पुष्पदंताचार्य ने दसवें श्लोक में संकेत किया था। न्याय दर्शन आरंभवादी है। न्याय एवं वैशेषिक ये दोनों दर्शन समानांतर हैं, बहुत कुछ इनमें मिलता जुलता है। ये दोनों ही दार्शनिक कहते हैं कि परमाणु से संसार का सृजन होता है, और नाश होने के बाद भी परमाणु रूप को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रलय में सब परमाणु रूप हो जाएंगे, परमाणु से अतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं होती है। न्याय दर्शन में एक यह भी मान्यता है कि परमाणु को ही ईश्वर भी कहते हैं। कुछ एक न्यायिकों का मत है, सबका मत नहीं है। ईश्वर के संकल्प से परमाणुओं से संसार हुआ। इसके बाद आता है आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन यह आपका आरंभवादी नहीं है बल्कि परिणामवादी है। जैसे दूध का परिणाम दही है या मिट्टी का परिणाम घट है, वैसे जो हम लोग दूध का परिणाम दही कहते हैं ना, ये लोकप्रवाद है। लोकप्रवाद मतलब किम वदंती चली आ रही है, परंतु परिणाम का लक्षण दूध दही में घटता नहीं। परिणाम उसे कहते हैं जिससे जो चीज बने और बनने के बाद उस रूप में स्थिर रहे और मिटने के बाद तद्भाव को प्राप्त हो जाए, उसको परिणाम कहते हैं। दूध से दही तो बनता है, परंतु दही जब नष्ट होता है तो दूध रूप को प्राप्त नहीं होता है। तो परिणाम का लक्षण कहां घटा? एक लोक प्रवाद है, चला आ रहा है, समझने समझाने की प्रक्रिया है। प्रवास्तव में परिणामवाद का दृष्टांत सही जो है आपका मिट्टी है या सोना है। आप मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, बनाने के बाद मृण्मय घड़ा होता है और फूटने के बाद भी घड़ा मृतिका के भाव को प्राप्त होता है। तो ये जो सांख्य दर्शन ये कहता है कि प्रधान से जगत हुआ, वह भी परमात्मा के सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं। कहते हैं कि जो प्रधान है, जो जड़ है, उसके द्वारा ही संसार उत्पन्न हुआ। प्रधान की परिभाषा है तीनों गुणों के साम्यावस्था को प्रधान कहते हैं, उसे संसार हुआ। इसके आगे मीमांसक आते हैं। मीमांसकों ने भी ईश्वर के सत्ता को नहीं स्वीकारा। ईश्वर के सत्ता को स्वीकारने वाले बहुत कम हैं। न्याय वैशेषिक वेदांति यही और योग भी स्वीकार करता है, चार है। तो मीमांसक कहते हैं कि सत्कर्म करो, बढ़िया कर्म करोगे तो जो है तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, घटिया कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। मतलब कि पश्चिम देश के नास्तिकों से हमारे देश के नास्तिक कुछ बढ़िया है, कम से कम सत्कर्म को मानते हैं। तो मीमांसक कर्म के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानता है कि जीवात्माओं के अपने दृढ़ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसके आगे वेदांत दर्शन है जो विवर्तवाद है। वेदांत कहता है कि उसी चैतन्य का ये संसार विवर्त है। इस प्रकार से दसवें श्लोक में संक्षेप से पूरे दार्शनिकों के विचार को पुष्पदंताचार्य ने रखा था और अंत में बहुत सुंदर बात कही थी। त्वाम स्तुवन न जिहरेमी, मैं इस प्रकार के शास्त्रार्थ के चक्कर में नहीं भटकता नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि आप ही संसार के अभिनिमित्तोपादान कारण है और आपके प्रसन्न हो जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दसवें श्लोक में बतलाया। दस, ग्यारह और बारह, इन तीन श्लोकों में दार्शनिक तथ्य को बतलाने के बाद अब एक पौराणिक तथ्य बतला रहे हैं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में किस प्रकार से लोगों ने भगवान शंकर की उपासना करके अपने इष्ट को प्राप्त किया। सतयुग की घटना दसवें श्लोक में बतलाया कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस ज्योतिर्मय लिंग की स्तुति किया जिससे भगवान ने दर्शन देके दोनों को कृतार्थ किया। वे भी भगवान के यत्ता परिचिति को जानने का बहुत प्रयास किए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान हरि नीचे गए, पर दोनों ही भगवान के सीमा को, जिसको हम परिच्छिन्नता कहते हैं, माप कहते हैं, नहीं जान पाए, क्योंकि अनंत है वह तत्व। अनंत, अनंत का अर्थ होता है न विद्यते अंत यस्स अनंत, जिसका अंत नहीं। अंत का अर्थ है परिच्छेद। परिच्छेद तीन तरह से होता है, दैशिक, कालिक और वस्तुकृत। जैसे कि हम लोग बंबई में हैं, कोई बंबई में पैदा हुआ वह व्यक्ति बंबई रूपी देश से परिच्छिन्न हो गया, सीमाएं बंद गया, उसको बंबई वाला बोलेंगे, विदेश में जाएगा तो भारतीय बोलेंगे, जीवन भर ये परिच्छेद उसके साथ लगा रहेगा, ये दैशिक परिच्छेद कहलाता है। दूसरा है काल, एक काल में वह उत्पन्न हुआ, एक काल में शरीर उसका छूट जाएगा, एक कालकृत परिच्छेद है। तीसरा वस्तुकृत है, उस पिंड को हम मनुष्य बोलेंगे, पशु नहीं बोलते हैं, परंतु जो परमात्मा है उसमें देशकृत कालकृत वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद शून्य होने के कारण उसको सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु भी उसको जान नहीं पाए कि इसका अंत क्या है, सीमा क्या है। तो दसवें श्लोक में सतयुग के कहानी को बतलाया। अब इस 11 श्लोक में त्रेता की बात बतला रहे हैं। पहले इस श्लोक का अर्थ कर ले, त्रिपुर हर संबोधन है। श्लोक का अर्थ करना हो तो पहले इसका अन्वय करना पड़ता, अन्वय के बाद में तब जाके पदार्थ उगती। तो त्रिपुर हर ये संबोधन है, हे त्रिपुर हर। त्रिपुर बोलते हैं ये जो तीन पुर है, तीन पुर मतलब के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये तीनों आविद्यक हैं। और जब तक हमारा ये तीनों पुर है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, कारण बोलते हैं विद्या शरीर को, स्थूल तो आपको दिखाई दे रहा अन्नमय है, अन्न से बढ़ता है, अन्न से घटता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसमें पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं। और इसका भी कारण है अविद्या शरीर, जिसको हम कहते हैं कामना वासना। इन तीनों शरीर को ज्ञान प्रदान करके नष्ट करने वाले, कल्याण करने वाले हैं, इसलिए त्रिपुर हर कहते हैं। और दूसरा त्रिपुर का अर्थ है जीव जगत ईश्वर। इस जीव और जगत ईश्वर जो तीन पुर हैं, इन तीनों को ज्ञान से जो नष्ट करने वाले, मिटाने वाले हैं, इसलिए इनको त्रिपुर हर कहते हैं। शिरः पद्म श्रेणी रचिता चरणा भोरुह बले। रावण ने आपको कैसे प्रसन्न किया, तो त्रेता की घटना बतला रहे हैं। अपने शिर रूपी कमल को, शिर को भी हम कमल कहते हैं, शिर रूपी कमल को भगवान के चरणों में समर्पित किया, एक के बाद एक सिर को चढ़ाते गया। इस प्रकार से 9 शिरों को कमल की तरह भगवान के चरणों में रख दिया। स्थिराया तद भक्ते, ऐसा अन्वय करना, यह स्थिर भक्ति थी। अपने शिर को बलिदान देना सबसे बड़ी चीज है। तो रावण कितने निष्ठा श्रद्धा के ऊपर, उसने स्थिरता से बिना किसी चंचलता के अपने शिर को समर्पित किया। त्वद भक्ते है, और आपके भक्ति के कारण इदम विस्फोर्जितम, यह जो है ना पराक्रम ऐश्वर्य प्रताप प्राप्त किया। यतः दशास्य त्रिभुवनम, यतः मतलब इस स्थिर भक्ति के कारण से, क्योंकि उपनिषद में आता है यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता यर्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी निष्ठा जैसे ईश्वर में है वैसे सद्गुरु में है, उसके लिए ही ये कथित अर्थ, उपनिषद अर्थ, शास्त्रीय अर्थ उसके अज्ञान अंधकार को दूर करके तत्व ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो ये जो रावण है वो अपने श्रद्धा भक्ति से अपने शिर को समर्पित करके दशास्य बोलते हैं दशानन रावण, त्रिपुर हर, त्रिभुवनम मल्ल के तीनों भुवन को, तीनों लोकों को अयत्नात बिना किसी प्रयास के अवैर व्यतिकरम, बिना वैर के बिना संग्राम के आपाद्य, सबको जो है अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद रणकंडो पर अवसान, फिर भी उसके 20 भुजाओं की जो खुजलाहट है नहीं मिटी, वह हमेशा अपना प्रतिद्वंदी ढूंढता था ताकि किसी से जरा मेरी कुश्ती हो तो जरा मेरी खुजली शांत हो। बाहुन अभृत, इस प्रकार के बाहुओं को उसने धारण किया। इस लीला का उद्देश्य इतना ही है, त्वद भक्ति स्थिराया, मतलब भगवान की स्थिर भक्ति। देखिए शिव महिमन के एक विशेषता है, प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में इस श्लोक का तात्पर्य क्या है उसको बतला देते हैं। अब हर श्लोक में देख सकते हैं, पहले श्लोक में कहा था कि निरपवाद स्तुति, दूसरे में कहा था कि अर्वाचीन जो पद है, जो सगुण साकार भगवान के विग्रह है, उसमें सबकी वाणी सबकी मन लग जाती है। तीसरे में अंतिम चरण में कहा था कि मैं स्तुति कर रहा हूं अपनी वाणी की और बुद्धि की शुद्धि के लिए। नवें श्लोक में बतलाया था कि आपकी स्तुति से किमा अनुवृत्ति न फलती, अर्थात सब कुछ मिल जाता है। और इस 11 में बतला रहे हैं कि स्थिराया त्वद भक्ते, आपकी स्थिर भक्ति किया जाए तो सब कुछ मिल जाता, जैसे कि रावण ने तीनों लोकों को जीत लिया बिना किसी संग्राम किए। जब मनुष्य भगवान की उपासना करता है, भक्ति करता है, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं। अक्सर समस्याएं तभी आती जब आप एकाग्र होकर भगवान का भजन करते हैं, उस समय मन में अनेक प्रकार की कामना होती है। जब आप कोई काम करते हैं तब तो मन उसमें लगा होता है, पर जब भगवान का ध्यान करना हो या जप करने लगते हैं, उपासना करते हैं, तो मन में न जाने कैसी कैसी कामना स्फुरित होती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये जो कामना है, ये कामना बैठती है सिर पर, ये कामना जो है ना महारानी है, ये छोटी मोटी जगह नीचे नहीं बैठती है, ये सीधा जो है ना, कल विवेक चूड़ामणि प्रसंग आया था बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर में, कि बिल्कुल सिर पर बैठती है। जो सिर हमेशा ऊपर रखता है ना, सबसे पहले उस अभिमानी के सिर पर कामना बैठ जाएगी। जैसे अभिमान हुआ तुरंत कामना बैठ जाती है, और कामना बैठने के बाद भी मनुष्य को नचाती है, अब बंदर की तरह नाचते रहता है। और आप अपने सिर को जैसे रावण ने भगवान संकेत के चरणों में समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया, ऐसे ही समर्पित कर देंगे तो जिस चरण पर भगवान के चरण कमल विराजमान हो जाएंगे, उस जो है ना सिर पर कामना नहीं आ सकती है। कोई मेहमान आपके घर में आए और आने के बाद आप सत्कार ना करो, अपने काम में लगे रहो, बात भी ना करो, एक बार दो बार तीन बार तो आएगा, पर यदि आप सत्कार नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, तो जीवन भर दोबारा नहीं आएगा। सोचेगा मैं घर में जाता हूं, कोई लोग मुझे पूछते भी नहीं, आदर भी नहीं करते, तो क्यों जाना। ऐसे जब कामना आए ना, जब भगवान की भक्ति करे कामना आए, तो आप उस विषय का चिंतन ही न करें। जब कामना रूपी महारानी का, विषय चिंतन रूपी अतिथि का आप आतिथ्य नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे, वो बेचारा दो बार तीन बार चार बार आने के बाद आना बंद कर देगा, बोलेगा कि ये तो अपने आप में मशगूल है, हमारा यहां कोई काम नहीं है। तो ये कामना तो ही परेशान करती जब हम उपासना ही नहीं करते हैं। उपासना जब करेंगे तो हमारा चरण जब भगवान के चरणों में झुक जाता है, और इस सिर पर जब भगवान के चरण पड़ते हैं, तो फिर कामना परेशान नहीं करती है। तो स्थिर भक्ति का प्रभाव महिमा बतलाया कि रावण ने किस प्रकार से तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित किया था। यहां पर बलि शब्द का प्रयोग किया है, बलि का अर्थ होता है भेंट, समर्पण। पर बलि का अर्थ कई जगह लोग जो है पशु बलि भी करते हैं, जो अवैदिक है। यहां जो रावण ने भगवान शंकर को 10 सिर चढ़ाया, इसका दार्शनिक तात्पर्य है, मसूदन सरस्वती जिन्होंने किसी महिमा पर बड़ा सुंदर एक टीका लिखी है, वह टीका हरिहर पक्षीय है, मतलब भगवान शंकर का भी वर्णन है और भगवान विष्णु का भी, दोनों देवताओं को लक्ष्य करके मसूदन सरस्वती ने विष्णु पक्षीय और शिव पक्षीय व्याख्यान बड़ा सुंदर लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि जो 10 सिर है, ये जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान ये जीभ, इतनी 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां दशास हैं। आस शब्द का अर्थ होता है मुख, यदि आप व्याकरण से विचार करें ना, तो आस शब्द का अर्थ होता है मुख, मतलब जिसके द्वारा आहार ग्रहण किया जाए उसका नाम मुख है। तो जैसे आप मुख से भोजन करते हैं वैसे आंख का भोजन रूप है, कान का शब्द है, नाक का गंध है, त्वचा का स्पर्श है। ये जो दस इंद्रियों को रावण ने भगवान शंकर के चरणों में तत्परता से समर्पित कर दिया, यही समझो कि दस सिर का ये बलि है, भेंट है, समर्पण है। परंतु रावण ने अपने मन को समर्पित नहीं किया था, रावण ने मन को समर्पित नहीं किया, इसलिए मन में कामना हुई और कामनाओं के कारण से फिर रावण का भगवान राम के द्वारा संहार होता है। तो यहां पर तो केवल इतना ही बताया कि किस प्रकार स्थिर भक्ति से रावण ने त्रेता में भगवान शंकर को प्रसन्न किया। हम लोग भी स्थिर भक्ति कर सकते हैं, परंतु व्यवहारिक जगत में स्थिर भक्ति करने के लिए तो बहुत से कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ी लोभ वृत्ति है। जैसे आप अपने कपड़े को सीने के लिए देते हैं दर्जी को देते हैं, दर्जी कहता है एक सप्ताह के बाद आना। जब आप एक सप्ताह के बाद जाते हैं तो क्या बोलता है, तीन रोज के बाद गए तो दरवाजा बंद कहीं और गया, होता है कि नहीं। फिर आप 10 रोज के बाद जाओ, बोले क्या करे सर, अमुक काम हो गया था, कर नहीं पाया। यदि आप स्थिर हैं, सावधान हैं, ना सजग हैं, उसने कहा एक हफ्ता, बस 2 दिन के बाद ही पहुंच जाओ, पूछो कि भाई तूने जो है कपड़ा काटा कि नहीं काटा, तुरंत उठाए काटना शुरू कर देगा। फिर जो है 1 रोज के बाद पहुंच जाओ, बोले कितना काम हुआ, जो 7 रोज में होना है 5 रोज में करके दे देगा, क्योंकि आप उसके सर पर स्थिर हो गए, खड़े हो गए ना। ऐसे ही तत्परता होनी चाहिए। जब घर में माताएं भोजन बनाती हैं तो बच्चे पूछते हैं कि मां अभी कितना देर है, तो मां को हर काम छोड़ के पहले भोजन तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बेटा कहता है कि मुझे 7 बजे स्कूल जाना है, अभी 6 बज रहे, तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे यहां पर जो है ना कोई ऐसा डंडा लेके खड़ा हो, जैसे दर्जी के ऊपर, या घर में बेटे होते हैं, मां को मजबूरन 7 के पहले तैयार करना पड़ता है। पर यहां तो जो भगवान है वो आपके ऊपर डंडे लेके खड़े नहीं है, मनुष्यों ने दे दिया आपको, 100 वर्ष के राजा बना दिया, आप कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं। परंतु ज्ञान विहीन पशु भी समान, आहार निद्रा भयमय थुनंच, समानम एतम पशुभि नारायणम। आहार भय निद्रा विषयानंद जैसा मनुष्य को उपलब्ध है वैसा पशु को उपलब्ध है। बस अंतर है केवल विवेक का, पशु के अंदर विवेक नहीं। यदि हमारा जीवन में विवेक न हो तो हमारा जीवन भी पशु से बदतर है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि यदि आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, स्थिर भक्ति चाहिए, स्थिर मतलब तत्परता होनी चाहिए। तत्परता बोलते हैं कि ऐसी ललक हो कि हमें मतलब कि उसके बिना चयन न हो। जैसे कि धनार्थी धन को इतना महत्व देता है,